जातस्य मृत्युधो एव सर्वता प्रतिक्रियायस्य न चेह कृप्लपा लोको यशाश्चाथ ततो यदि हि अमुम् को नाम मृत्युम् न वृणीत युक्तम् जातस्य मृत्यु ध्रुव एव सर्वता प्रतिक्रियायस्य न चेह कृप्लपा लोको यशाश्चाथ ततो यदि हि याममुम् को नाम मृत्युम् न वृणीत युक्तम् शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जातस्य जिसने जन्म लिया है समस्त जीव उनकी मृत्यु मृत्यु ध्रुव अनिवार्य एव निसंदेह सर्वतः संसार में सर्वत्र प्रतिक्रिया बचने का उपाय काट यस्य जिसका ना नहीं चा भी इह इस संसार में कृप्लिप्ता बनाया गया लोकः स्वर्गलोक यशः कीर्ति च तथा अथ तब ततः उससे यदि यदि हि निसंदेह अमुम वह कह कौन नाम निसंदेह मृत्युम मृत्यु ना नहीं वृणित स्वीकार करेगा युक्तम अनुकूल अनुवाद मृतासुर ने कहा इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। हाँ इस संसार में कोई मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढ सकता है। विधाता तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मृत्यु ध्रुव है यदि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही हो और उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश तथा कीर्ति बने रहे तो भला कौन पुरुष होगा जो यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। तात्पर्य यदि मरने से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही हो और मृत्यु के बाद चिर यश बना रहे तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को ठुकरा देगा। ऐसा ही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन लड़ने से विमुख मत हो। यदि तुम विजयी हो तो राज्य भोग करोगे और यदि मरते हो तो स्वर्ग लोक को जाओगे। प्रत्येक मनुष्य को यशस्वी कार्य करते हुए मरने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यशस्वी पुरुष कुत्तों की मौत मरने के लिए नहीं होते। अंतिम श्लोक श्लोक नंबर 33 उसका अनुवाद। यशस्वी मृत्यु के वरण करने के दो उपाय हैं और वो दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। पहला है योग साधना विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को वश में करके श्री भगवान के चिंतन में लीन रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा है युद्ध भूमि में सेना के आगे चलकर तथा कभी की पीठ ना दिखाकर मरना। शास्त्र में इन दोनों प्रकार की मृत्युओं को यशस्वी कहा गया है। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का इस भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग चल रहा है। मृतासुर के जो सेना थी असुर देवताओं से भयभीत होकर भाग गए और मृतासुर सबको बुला रहे हैं सबका नाम लेकर बुला रहे हैं और मृतासुर ने कहा कि जातस्य मृत्यु ध्रुवम एव सर्वता जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ है अनिवार्य है एव निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है और सर्वता सब जगह ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में या अमेरिका में सब जगह या खाली केवल पृथ्वी पर सब जगह आभ्रम भुवनाओ लोका पुनरावृत्ति अर्जुना ब्रह्मा जी की लोक से लेकर नीचे लोक तक सब जगह जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी की मृत्यु भी निश्चित है। और प्रतिक्रिया यस्य न चेह कृप्लिप्ता, और इसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है, इसका कोई काट भी नहीं है, जितना मर्जी आप प्रयास कर लीजिए आप मृत्यु से नहीं बच सकते। जब ये दो कंडीशंस हैं कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निस्संदेह है, अनिवार्य है, और सब जगह कहीं भी जाकर उससे बचा नहीं जा सकता, और इसके कोई काट भी नहीं है, इसका कोई तोड़ भी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? लोको यश्चा यततो यदि ही अमुम कोम ना मृत्यु ना व्रणीत युक्तम। तो क्यों ना ऐसी मृत्यु मरी जाए, ऐसी मृत्यु को प्राप्त किया जाए कि जिसको प्राप्त करके हम ऊंचे लोकों में जाएं और फिर पृथ्वी पर हमारा यशगान होता रहे। मरना तो है ही है। प्रभुपाद कहते हैं कोई भी यशस्वी पुरुष कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहता। इस ढंग से मरना चाहता है कि लोग हमेशा याद रखें, उसको याद भी रखें, वो समाज के लिए उदाहरण भी बन के जाए, और साथ में वो ऊंचे लोकों में जाकर भोग करे। उसके बाद वितासुर बताते हैं कि यशस्वी मृत्यु का अर्थ क्या है। बोले यशस्वी मृत्यु के वर्णन करने के दो उपाय हैं और बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। यहां पर तो आम लोग जिसका भी मृत्यु होती क्या लिख देते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। तो बोले स्वर्गवासी अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? युद्ध में जाके लड़ाई करनी पड़ेगी और बिना पीठ दिखाए। यहां पे कोर्ट कचहरी में लड़ाई करते करते हार्ट फेल हो गया तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। युद्ध में जाकर एक क्षत्रिय के समान लड़ना पड़ेगा बिना पीठ दिखाए। यशस्वी मृत्यु मरनी पड़ेगी, पानी पड़ेगी, तब आप स्वर्गलोक सबके वासी बनेंगे। या फिर दूसरा यह है कि योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन और प्राण को वश में करके श्री भगवान के चिंतन में लीन करके मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये दो यशस्वी मृत्यु हैं, एक तो युद्ध में बिना पीठ दिखाई लड़ना और दूसरा भक्ति योग में अपने मन वाणी और शरीर को लगाकर लीन होना। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय। तो पिछले शनिवार भी यही विषय था, मृत्यु का विषय था, आज भी मृत्यु का विषय है। तो मृत्यु की चर्चा श्रीमद् भागवत में बहुत बार की गई है, तो आप में से कुछ भक्त हो सकते हैं वो आज भी मृत्यु के विषय में बात बताएंगे। और साधारण जीवन में कोई भी मृत्यु की बात नहीं करना चाहता। किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, बोले वाह बच्चा पैदा हो रहा है, वैसे तो इसने मरना ही है एक दिन, जातक से ध्रुव मृत्यु हो, है ना, तो बोले क्या है मनहूस बातें कर रहे हो। किसी का विवाह हो रहा हो, बोले ये सब किसी ने एक दिन तो मरना ही है। तो प्रभुपाद कहते थे कि अगर किसी का जन्म भी हुआ है, जन्म होते ही बुढ़ापा पैदा हो जाता है, जन्म पैदा होते ही मृत्यु पैदा हो जाती है। हालांकि लोग खुशी मना रहे होते हैं बच्चा पैदा हो गया, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर फिलोसफिकली स्टडी करो, बच्चा पैदा नहीं हुआ, मृत्यु पैदा हुई है। और जब बच्चा ग्रो करता है तो क्या कर रहा है? प्रभुपाद कहते हैं ही इज डाइंग। अगर कोई बच्चा एक दिन भी पुराना हो गया, कितना क्या एज है? वन डे ओल्ड, यानी कि एक दिन मर गया। किसी का जन्म नहीं होता, बोले कितने साल हो गए? 30 साल, यानी 30 साल आप मर गए। तो जन्म के साथ साथ ही मृत्यु पैदा हो जाती है। ये मृत्यु लोक है, इस भौतिक जगत को हम एटीएम कह सकते हैं, एनी टाइम मृत्यु या ऑल टाइम मृत्यु। और इसका जो कोड वर्ड है वो यमराज जी के पास है, कभी भी किसी भी समय कॉल आ सकती है, किसी भी समय। जब इस मृत्यु लोक में मृत्यु निश्चित है और जन्म होते ही मृत्यु निर्धारित हो जाती है, जन्म होते ही। इससे प्रभुपाद कहते हैं जन्म भी एक भ्रम है, मृत्यु भी एक भ्रम है, शरीर भी एक भ्रम है, शरीर से जुड़ी सारी वस्तुएं, ये देश सब भ्रम है, सब भ्रम है। आप देखिए मृत्यु है क्या, मृत्यु किसकी होती है? बोले उसकी मृत्यु होगी, क्या क्या हुआ मृत्यु? क्या मरा? शरीर मरा, शरीर तो हमेशा ही मरा होता है। शरीर कैसे बनाया? भूमि आपो नल वायु, ये तो डेड मैटर है। बोले ये मर गया, बोलेंगे ये मर गया? ये जिंदा कब था जो मर गया? शरीर तो है ही मरा हुआ, क्या मरता है फिर? आत्मा, आत्मा मरती नहीं। ये सारा कॉम्बिनेशन क्या है? शरीर का और आत्मा का। आत्मा मर सकती नहीं, शरीर वैसे ही मरा हुआ, तो मरा क्या? आप सोचिए क्या हो रहा, क्या हुआ क्या? ये शरीर डेड मैटर है, ये तो मालूम है ना, ये तो डेड मैटर है। आत्मा चिन्मय है, आत्मा मर नहीं सकती। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा मर नहीं सकती, शरीर पहले से ही मरा हुआ है, तो मृत्यु हुआ क्या? कुछ भी नहीं, एक भ्रम है। क्या बताते हैं भगवान कपिल कि इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीव को मन और इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी का कर्म फल चुक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं। जब सर्टन सेट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो उसको मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उसको जन्म कहते हैं। जब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का कोई फल प्रारंभ होता है तो वो जन्म कहलाता है, जब पूर्व जन्मों के कुछ क्रियाओं का फल समाप्त हो जाता है तो उसको मृत्यु कहते हैं। ये सब इल्यूजन है, सब भ्रम है, क्योंकि शरीर कभी मरेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मरा हुआ है, और आत्मा कभी मर नहीं सकती, आत्मा चिन्मय है। तो किस ढंग से हमें इस मृत्यु को देखना चाहिए? मृत्यु अनिवार्य है। जब मृत्यु अनिवार्य है तो इससे हम बच नहीं सकते। भगवान उद्धव को भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं, मृत्यु अच्छी नहीं लगती, और क्योंकि हर व्यक्ति फांसी के स्थान पर ले जाने वाले अधम व्यक्ति के समान है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी सुनाई दी जाती है, कंडेम टू डेथ, इसी व्यक्ति हर कोई, हम में से हर कोई, वी आर कंडेम टू डेथ, हम सबको फांसी किसी का सुना दी गई है। तो फिर भौतिक वस्तुओं या उनसे प्राप्त तृप्ति से लोगों का कौन सा संभव सुख मिल सकता है? यहां पे तात्पर्य बता रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्यगण, पूरे विश्व भर में यह प्रथा है, जब किसी को फांसी चढ़ाई जाती है और उसको फांसी के लिए ले जाया होता है तो उसको उस दिन जेल में फीस्ट खिलाई जाती है, शाही पनीर, फ्रूट क्रीम, पूड़ी, पुलाव, बढ़िया बढ़िया एकदम व्यंजन, वो सो खिलाए जाते हैं। तो जैसे ही वो फीस्ट देखता है उसको याद आती है आज फांसी का दिन है, आज सूखी डबल रोटी ब्रेड नहीं मिल रही, बिना चीनी के चाय नहीं मिल रही, आज बहुत बढ़िया थाली सामने लग के आई है, इसका मतलब आज मैं सूलि पे चढ़ने वाला हूं। इसी ढंग से इस संसार में जब इंद्र तृप्ति के विषय देखें तो हमें इसका याद आना चाहिए, ये जो फीस दिखाई दे रही है आसपास, ये रिमाइंडर है, वी आर कंडेम टू डेथ, कभी भी हमें फांसी चढ़ा दी जाएगी। उदाहरण दिया जा रहा है, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास वर्ल्ड सॉकर मैच देख रहे हैं, हाथ में कॉफी का कप है और सामने बिल्कुल काला सा नाग बैठा हुआ है, आप ये बताइए कौन व्यक्ति आराम से बैठ के टीवी देख सकता है? देख सकता है कोई समझदार व्यक्ति देखेगा? ये हम सबकी स्थिति है, किसी भी समय काल सर्प हमें डंक मार सकता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं बैठे, आसपास सबको मरते हुए देख रहे हैं। यमराज जी को ईश्वर से पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले सब लोग मर रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं यमलोक में जा रहे हैं, लेकिन सोचे मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, घुंटे पारे गोबर हास है, दो तरह के गोबर हैं, एक तो गोबर है फ्रेश गोबर वेट, और बेचारे उस गोबर को जब ड्राई करके उपला बनाया जाता है तो जो फ्रेश गोबर है उस उपले को देखता है उसको अग्नि में डाल दिया गया, बोले हा 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 हा, अग्नि में चला गया, अग्नि में चला गया, मैं कितना फ्रेश हूं, ये बेचारा अग्नि में चला गया, हंसी उड़ा रहा है, उसको नहीं मालूम कुछ समय के बाद इसको भी सुखाया जाएगा और इसको भी अग्नि में डाला जाएगा। ये हम सबकी स्थिति है, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता, निश्चित है। तो फिर क्या किया जाए? इस ढंग से हम किसी को, हर किसी को जैसे फांसी की सजा सुना दी गई है, ये हमारे लिए नियुक्त किया गया है कि हमें किस दिन इस संसार को, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो केवल मनुष्य शरीर ही प्राप्त हुआ है जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। हरि विनाना मृत्यु तरंते, केवल कृष्ण ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दे सकते हैं। भगवान गीता के 12वें अध्याय में क्या बताते हैं, चिरामी ना पार्थ मृत्यु संसार, मृत्यु श्लोक 12th chapter, जो मैं तुरंत अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के सागर से पार कर देता हूं, मृत्यु संसार सागर, शीघ्र ही, चिरामीना, बहुत देर नहीं लगेगी, शीघ्र ही मैं अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के सागर से पार कर देता हूं। भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, साक्षात वेद जब स्तुति करते हैं भगवान की तो बहुत ही एक सुंदर श्लोक है, जब यह मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त में लाया जाता है, जब हम इस शरीर को भगवान की पूजा में लगाते हैं तो क्या होता है, तो यह आत्मा मित्र तथा प्रिय की तरह कार्य करता है। जब हम शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो यह शरीर हमारा प्रिय मित्र बन जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश यद्यपि आप बद्ध जीवाओं के प्रति सदैव कृपा प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से स्नेह पूर्वक सहायता करते हैं और यद्यपि उनके असली आत्मा है किंतु सामान्य लोग आप में आनंद नहीं लेते, उल्टे वे माया की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। हाय, असत्य के प्रति भक्ति करके वे निरंतर सफलता की आशा करते हैं किंतु वे विविध निम्न शरीर धारण करके इस अत्यंत भयावह जगत में निरंतर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर वेद प्रार्थना कर रहे हैं कि जब ये मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लगता है तो ये हमारा असली मित्र बन जाता है। आपका सबका क्या अनुभव है, जब से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं आपका शरीर स्वस्थ हो गया है, आपका शरीर असली मित्र बन गया है। ये वेद श्रुतिगण स्तुति कर रहे हैं। लिखा हुआ है, जब ये मानव शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लगता है तो ये आत्मा मित्र तथा प्रिय की तरह कार्य करता है। क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए, ये शरीर भौतिक है अभी, लेकिन अभी शरीर को जब पूर्ण रूप से हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये भी चिन्मय हो जाता है। तभी जब महान महान आचार्यों के शरीर को जलाया नहीं जाता, उनकी समाधि बनाई जाती है कि पूरा जीवन वो समाधि में रहते हैं तो जीवन के अंत में भी वो समाधि में लीन हो जाते हैं। तो शरीर को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो शरीर चिन्मय हो जाता है। हालांकि भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि भक्तगण कष्ट पा रहे हैं। हम श्रीला माधवेन्द्रपुरी जी के जीवन में देखते हैं, श्रीला माधवेन्द्रपुरी अपने जीवन के अंत काल में अंत्य लीला में वो बिस्तर पर बैठ के मलमूत्र त्यागते थे और ईश्वरपुरी जो उनके शिष्य थे उनकी सेवा करते थे, लेकिन इस स्थिति में भी वो भगवान के विरह में कराहते थे, क्रंदन करते थे। तो ये शरीर है, हालांकि दिखने में लगेगा कि हम कष्ट पा रहे हैं, भक्त को लगेगा कष्ट पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये असली मित्र का कार्य करता है। जैसे आपने बताया, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट बनता है कि हम भगवान का स्मरण कर सके। अंत काल में भी भक्त लोग अपने चेतना के सबसे अंतरंग चेतना में भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान को भूलते नहीं है। तो ये शरीर हमें मदद करता है। दिखने में लग सकता है बाहरी रूप से शरीर अस्वस्थ हो रहा है, शरीर कष्ट पा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से एक बाहरी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो कभी भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। जब हरिदास ठाकुर के पास गोविंद भगवान का प्रसाद लेके गए तो उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आकर उनसे पूछते हैं कि हरिदास क्या समस्या है, तो हरिदास ने क्या बोला था, मेरा जप नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये नहीं बोला कमर में दर्द है, बहुत कमजोरी हो रही है, एक साधारण व्यक्ति ये बोलेगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मेरा जप नहीं हो पा रहा। उनको ये चिंता है कि मैं कहीं भगवान को भूल ना जाऊं, और वो साथ में स्मरण भी कर रहे हैं। तो शरीर हमारे मित्र का कार्य करता है, और अगर हम इस शरीर को असत की पूजा में लगाएंगे, असत की पूजा है कि इस संसार की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर उनकी पूजा करेंगे, तो हम हमेशा भ्रमित होकर निम्न नियोनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए शरीर हमें, मनुष्य शरीर में सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हैं, और इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतनाओं को उत्कृष्ट करके ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें कि दोबारा हमें इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़े। ये मनुष्य शरीर हमें अमर बनने के लिए मिला है, बार बार मरने के लिए नहीं। और ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, जाता से ही ध्रुव मृत्युम, हालांकि इसकी मृत्यु ध्रुव है, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं तदपि अध्रुवम अर्थदम, क्योंकि इसकी मृत्यु ध्रुव है तो मनुष्य शरीर बहुत अध्रुवम है, अनिश्चित, किसी भी समय जा सकता है, लेकिन कुछ ही समय में हम इसका ऐसा उपयोग कर सकते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएं। राजा खटवांग थे जो कि देवताओं की जाके मदद करते थे स्वर्ग लोक में। जब देवताओं ने उनसे पूछा, बोला हम आपको क्या आशीर्वाद दें, तो राजा खटवांग ने तुरंत अपनी लिस्ट नहीं दे दी। राजा खटवांग ने बार बोला, पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बताइए कि मेरा जीवन काल कितना शेष बचा है, पहले ये बताइए, उसके अनुसार मैं बताऊं। उन्होंने बताया आप तो किसी भी क्षण मर सकते हैं। तो राजा खटवांग वहां रुके नहीं, तुरंत पृथ्वी लोक पर आए, भक्ति प्रारंभ की और शरीर त्यागकर भगवत धाम चले गए। तो वहां श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है कि वो अगले जीवन की तैयारी करे, सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस जीवन की अर्जेंट समस्याओं में अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। हम लोग इस जीवन की छोटी छोटी अर्जेंट समस्याएं, पानी का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, गाड़ी की किस्त भरनी है, सास ससुर की लड़ाई हो रही है, घर में क्लेश है, कोर्ट कचहरी के किस्से हैं, लेबर की प्रॉब्लम है, सेल टैक्स की प्रॉब्लम है, एक्साइज की प्रॉब्लम है, इन सब के बीच में भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है? और आप बोल रहे हैं अगले जीवन की तैयारी करो। अरे कल बिजली कट जाएगी, पानी कट जाएगा, लेबर स्ट्राइक पे जा रही है, आप बोले अगले जीवन की तैयारी करो। ये बड़ी थियोरेटिकल बातें लगती हैं। कैसे संभव है? दो वक्त के खाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, आप बोल रहे अगले जीवन की तैयारी करो। है? कैसे संभव है बताइए, संभव है क्या? प्रैक्टिकली यही तो हम फेल होते हैं। जीवन की इतनी अर्जेंट समस्याएं हैं, इतनी अर्जेंट समस्याएं, उसी में उलझ के रह जाते हैं और काल रूपी सर्प कभी भी हमें निकल जाएगा। फिनिश लाइफ, फिनिश। तो बताया कि अगर जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करेंगे तो छोटी छोटी छुटपुट छुटपुट सुख मिलेंगे, लेकिन जीवन की असली समस्याओं के समाधान में लगेंगे तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी। भगवान उद्धव को बताते हैं कि एक ब्राह्मण को अपने शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए। ब्राह्मणस्य ही देहो अयम शूद्र कामाय निश्यते, कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यांत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर शूद्र इंद्र तृप्ति के भोग के निमित्त नहीं होता, प्रत्युत वह कठिन तपस्या स्वीकार करके मृत्यु के उपरांत असीम सुख भोगेगा। हमारा यह शरीर छोटी छोटी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है और इंद्र तृप्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नहीं है। हमारा यह शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर का प्रत्येक क्षण मृत्यु के समाधान करने के लिए लगाना चाहिए। यानी इस मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण हमें भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। भक्ति के बिना मृत्यु का और कोई समाधान नहीं है। भक्ति योग में ही लगकर हम इस मृत्यु को पार कर सकते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया कि इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक क्षण भी के लिए भी हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर एक क्षण भी भगवान का विस्मरण हुआ तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा नुकसान है। सृष्टि का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है कि पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और कई लोगों को हार्ट फेल हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई। सृष्टि का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मनुष्य जीवन का एक क्षण बिना कृष्ण के स्मरण के चला गया। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरत प्राग्यो धर्मन भगवता नहीं। 5 वर्ष की आयु से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो कि भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करना है। 5 वर्ष की आयु से ही, इसमें कोई समय व्यर्थ नहीं गवा सकते। तो एक ब्राह्मण का जीवन तपस्या के लिए है, शूद्र इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि तपस्या करके मृत्यु के बाद असीम सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी 1972 में लॉस एंजलिस में थे, तो जब वो गाड़ी से निकल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सिनेमा का बिलबोर्ड देखा और उसमें एक प्रश्न था, इज देयर एनी सेक्स लाइफ आफ्टर डेथ, क्या मृत्यु के बाद मैथुन जीवन होगा? तो अगर होगा तो हम मरने से डरते नहीं। अगर मृत्यु के बाद भी मैं सेक्स कर सकता हूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर क्या समस्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य है सेक्स लाइफ एंजॉय करना, मर भी जाऊं उसके बाद फिर से सेक्स लाइफ, क्या समस्या क्या है? मर जाते तो ये लोगों की सोच है। प्रभुपाद कहते हैं निश्चित रूप से जीवन के बाद अगला जीवन होगा, आहार निद्रा भय मैथ उनकी फैसिलिटी तो हर जीवन में है, तो ये कोई सुख सुख नहीं है। हमें तो ये देखना चाहिए कि मृत्यु के बाद हम सीधा भगवत धाम वापस जा सकें। भगवान कपिल देव बताते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से सुखमय सेवा प्राप्त करता है तो वो उसके लिए मृत्यु के समान है। भगवान द्वारा कृपा कर ध्यानपूर्वक सुनिए, अभी खुले मन से, हम किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, सुनिए जरा। कपिल भगवान कह रहे हैं, माता देवहूति को बता रहे हैं, भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है उसे यह भली भांति समझना चाहिए कि यह घास के ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। अगर कोई पुरुष स्त्री से, उसकी सुंदरता से आकर्षित होता है और उसकी सुंदर सुंदर सेवाएं प्राप्त करता है तो किसके समान है? कोई अंधा कुआं जो घास से ढका हुआ हो वो मृत्यु का मार्ग है। और इसी ढंग से बताया गया है, जब कोई स्त्री पुरुष को ये समझे कि वो मुझे घर संतान संपत्ति इत्यादि देने का एक स्रोत है तो वो पुरुष स्त्री के लिए मृत्यु का मार्ग है। यानी अगर स्त्री और पुरुष एक दूसरे को अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए मृत्यु के मार्ग हैं। अगर स्त्री पुरुष की अच्छी अच्छी सेवा कर रही है, अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रहे हैं, इसलिए पुरुष स्त्री से आसक्त है तो वास्तव में मृत्यु का मार्ग है। हे मेरी प्रिय मृत्यु, बहुत अच्छा व्यंजन बनाया। वो बोले हे मेरी प्रिय मृत्यु, आप मेरे लिए बहुत से आभूषण लेके आए। वास्तव में ये है, दोनों एक दूसरे के लिए मृत्यु का मार्ग है। ये नियम वैष्णव और वैष्णवी पर लागू नहीं होता, इसलिए बुरा मत मान, क्योंकि वैष्णव और वैष्णवी सब मिलकर भगवान की सेवा में गुरु की आज्ञा के अनुसार लगते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हम किसी स्त्री से आकर्षित हैं, केवल उसके देह से आकर्षित हैं, तो वो हमारे लिए साक्षात मृत्यु का मार्ग है। या स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित है तो उसके लिए मृत्यु का मार्ग है। तभी इस जीवन में जो स्त्रियां हैं वो पूर्व जन्म में क्या होती हैं? पुरुष। और पुरुष जो होते हैं पूर्व जन्म की स्त्रियां। ये कोई हमारी अटकल नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, ये भगवान कपिल कह रहे हैं। जीव जिसे अपने पूर्व जन्म में स्त्री आसक्ति कारण स्त्री का रूप प्राप्त होता है, मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उससे ही संपत्ति, संतान, धन और अन्य भौतिक साथ समाज देने वाला समझता है। जो जिसके पति आसक्त होता है उसी भावना के अनुसार उसको वही शरीर प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमें इस मनुष्य शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी में आ रहे थे तो रास्ते में उनको ऐसा रोग हो गया कि पूरे शरीर में उनके पस भर गया। तो वो क्या सोच रहे थे, अब इस शरीर से मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता तो क्या करूंगा, जगन्नाथपुरी में रथ के नीचे आकर इस शरीर को त्याग दूंगा। उन्होंने पूरी योजना बना रखी थी। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको पकड़ा और बोला, ये शरीर किसका है? मेरा है, और इस शरीर के द्वारा मैं धर्म की स्थापना करूंगा। तुम इस शरीर को ऐसे त्याग नहीं सकते। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किस ढंग से भगवान के भक्त अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, जब रावण ने सीता का अपहरण किया और सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में उनको कौन मिले? जटायु। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। ये हम हिजोरनाथ भक्ति विकास स्वामी महाराज जी की द्वारा पुस्तक से कुछ प्रसंग पढ़ेंगे। ऐसे हम देख सकते हैं कि जटायु ने किस ढंग से भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाया। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु उठा और देखा कि रावण उन्हें निर्दयता पूर्वक उठाए जा रहा है। उन्होंने राक्षसों के राजा को ललकारा, अरे रावण, मैं जटायु हूं, गिद्धों का राजा, तुमने पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का साहस कैसे किया? मैं अभी 60,000 वर्षों का हो चुका हूं और मेरे पास कोई अस्त्र भी नहीं है। तुम युवा हो और तुम्हारे पास अनेक हथियार हैं। देखिए सारी सिचुएशंस बिल्कुल ऑड हैं, किसके लिए? जटायु के लिए। किंतु मैं तुम्हें सीता को नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुम्हें सचेत करता हूं, अपना कुप्रयोजन त्याग दो अथवा अपने इस रथ से इस प्रकार गिरने के लिए तैयार हो जाओ जैसे कि वृक्ष से पका हुआ फल गिरता है। साहस देखिए जटायु जी का। 60,000 वर्ष उनकी आयु है, कोई अस्त्र नहीं है और कैसे रावण को ललकार रहे हैं। बोले अब तैयार हो जाओ रथ से गिरने के लिए जैसे वृक्ष से पका हुआ फल गिरता है। इस प्रकार ललकारे जाने पर रावण क्रोधित होकर जटायु की ओर लपका। जैसे ही उन दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ ऐसे लगने लगा मानो दो पर्वत एक दूसरे से टकरा रहे हों। रावण ने जटायु पर अनेक हथियारों से प्रहार किया किंतु उस विशाल गिद्ध ने अपने चंगुलदार पैरों से रावण को कुरेद दिया। यद्यपि अपने अनेक शक्तिशाली बाणों से जटायु का शरीर घायल हो चुका था तथापि रावण के रथ से चीखती हुई सीता के दृश्य ने उसे सारी पीड़ा सहन करने के लिए सक्षम बना दिया। हालांकि रावण ने जटायु पर कई प्रहार किए, उनका शरीर घायल हो गया, लेकिन फिर भी सीता जी को कराहते देखकर जटायु को कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। आप देखिए ये कितना शिक्षाप्रद प्रसंग है कि जटायु वृद्ध है, जटायु के पास कोई अस्त्र भी नहीं है और रावण बहुत शक्तिशाली है, फिर भी जटायु पूरे साहस से अपने इस वृद्ध शरीर को भगवान की सेवा में लगा रहा है। और माता सीता कराह रही हैं, उनकी कराह सुनकर उनको अपने शरीर की कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा। हम लोग जब प्रचार में जाते हैं तो हमें भी तरह तरह की कठिनाइयां सहन करनी पड़ सकती हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के आदेश, शिला प्रभुपाद जी की जीवनी, पूर्ववर्ती आचार्यों की जीवनी को देखकर हमें उत्साह बढ़ना चाहिए और हमें इस पीड़ा का अनुभव हम नहीं करेंगे अगर हम उनसे उनके जीवन का हमेशा स्मरण करते रहेंगे। जटायु ने बाणों के भयंकर प्रहार से पति रक्षा के लिए अपने परों का उपयोग किया और अपने पैरों से रावण के धनुष को नष्ट कर दिया। इसका लाभ उठाते हुए जटायु ने शीघ्र रावण का कवच फाड़ दिया और अपने नुकीले पंजों से रथ से जुते हुए खचरों का वध कर दिया। रावण के रथ के खचरों का वध कर दिया, उसका कवच फाड़ दिया, एक पक्षी और कहां रावण। उसने रथ को नष्ट कर दिया और साथ साथ अपनी चोंच से रावण के सारथी का सर भी काट दिया। देखिए यह है उत्साह। रथ नष्ट हो जाने से रावण भूमि पर गिर गया, किंतु उसने सीता को अपनी भुजाओं में दबाए रखा। वन के सभी प्राणी पराक्रम के इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखकर जटायु के साहस की सराहना करने लगे, किंतु जटायु वृद्ध था और शीघ्र ही थक गया। रावण एक हाथ में सीता को पकड़े हुए और दूसरे हाथ में तलवार लिए आकाश में उड़ने के लिए उठा। रावण की निंदा करते हुए जटायु अकस्मात उसकी पीठ पर कूद पड़ा और उसके बालों को पकड़कर इतनी जोर से खींचने लगा कि रावण राक्षसों के उस राजा के अधर क्रोध से कांपने लगे। रावण की ऐसी दुर्गति किसने की होगी। एक पक्षी उसकी पीठ पर खुशी से बालों को जोर जोर से हिलाने लगा, उसको गालियां देते हुए। अपनी बाई जंगा से सीता को दबाए हुए रावण ने पीछे की ओर हथेली से जटायु पर प्रहार किया, किंतु जटायु ने स्वयं को उस प्रहार से बचा लिया और रावण की बाई ओर की 10 भुजाओं को अपनी शक्तिशाली चोंच से फाड़ दिया। रावण की जो 10 भुजाएं थी उनको काट दिया, किंतु अनेक स्थान पर उनके स्थान पर तुरंत ही रावण की 10 नई भुजाएं उत्पन्न हो गई। तब राक्षसों के राजा ने सीता को एक ओर छोड़कर अपनी मुष्ठी एवं पैरों से जटायु पर प्रहार करना आरंभ किया। यह युद्ध लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। निराश होकर रावण ने अपनी तलवार उठाई और जटायु के पंख, पैर और मांसल पार्श्व को घातक रूप से काट दिया, जिससे वे घायल होकर गिर पड़ा। विषादग्रस्त सीता वहां पहुंची जहां जटायु पड़ा था। आंखों में आंसू भरकर वे उसका आलिंगन करने लगी, किंतु शीघ्र ही रावण आकर उनके केश पकड़कर उन्हें वहां से उठा ले गया और वे शोक से व्याकुल होकर राम राम पुकारने लगे। इस ढंग से रावण सीता को ले जाते हैं और वहां पर भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं जहां की जटायु घायल अवस्था में है। तो राम ने उद्वेग से पूछा, हे जटायु, कृपया मुझे सीता एवं उनके अपहरणकर्ताओं के विषय में सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। और फिर जटायु ने सब कुछ बताया कि रावण किस जंग से सीता का अपहरण किए हैं। और फिर भगवान लक्ष्मण से क्या कहते हैं, सीता के अपहरण की घटना से अधिक त्रस्त मैं जटायु की मृत्यु से हुआ हूं। भगवान राम को सीता के विरह में बहुत दुख हो रहा था, लेकिन बोले इससे ज्यादा दुख मुझे जटायु की मृत्यु से हुआ है। और फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, वो चिता तैयार करते हैं और भगवान राम स्वयं जटायु का संस्कार करते हैं। भगवान राम इसलिए संस्कार करते हैं, लक्ष्मण बताते हैं, ताकि सब लोग ये जान सकें कि जो लोग मेरी सेवा में अपने शरीर को लगाते हैं उनका क्या हर्ष होता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना। इस संसार के आकर्षणों से आकर्षित होकर इस जीवन को व्यर्थ गंवाने का कोई लाभ नहीं है। यह मनुष्य शरीर मिला है कि पूर्ण रूप से हम इसको भगवान की सेवा में लगाएं। जब हम पूर्ण रूप से इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तब ये अर्थधम, तब हम इससे असली अर्थ प्राप्त कर पाएंगे। एक भक्त को हमेशा, एक भक्त मृत्यु से डरता नहीं है। भक्त देखिए, ये मनुष्य जीवन तो उसके समान है जैसे आप लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जिसमें बहुत बबल्स आते हैं, कौन सी होगी आजकल, स्प्राइट है जैसे होते हैं ना, स्प्राइट को ग्लास में डालेंगे कई बबल्स निकलेंगे। तो मनुष्य जीवन उस बबल के समान है बस। और ये आजकल साइंटिस्ट लोग बहुत बहुत टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर रहे हैं, किस लिए, इस बबल की लाइफ को बढ़ाने के लिए, कि बबल का जीवन बढ़ जाएगा। नहीं, ये तो बबल फुट करके फट जाएगा। ये है बस मनुष्य जीवन। तो जो एक साधारण व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जब वृद्ध हो रहा है, उसकी क्या अभिलाषा होती है कि समय रुक जाए। मैं ज्यादा बूढ़ा हो रहा हूं, बाल सफेद हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, पीठ झुक रही है, समय रुक जाए। ये घड़ी तो रुक जाएगी लेकिन समय नहीं रुकेगा। लेकिन जो बच्चा होता है वो क्या कहता है, समय और तेजी से चले, मैं जल्दी से एडल्ट हो जाऊं, मैं एडल्ट सिनेमा देख सकता हूं और इंजॉय कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, खूब पैसे कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, कुछ भी कर सकता हूं। तो युवा व्यक्ति सोच रहा है कि समय जल्दी निकले, वृद्ध व्यक्ति समझता है समय रुक जाए। और कई लोग बोर हो जाते हैं तो बोले क्या करें, चलो टाइम किल करते हैं, जिनको मालूम नहीं है मिस्टर टाइम उनको किल कर देंगे, सब कुछ हर लिया जाएगा। भगवान जो काल है वो कृष्ण का दूसरा रूप है। ये मृत्यु निश्चित है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि अगर मृत्यु निश्चित है इससे हमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत दृढ़ हो जाना चाहिए, बहुत डिटरमाइंड होना चाहिए कि मृत्यु तो निश्चित है ही। मृत्यु निश्चित है तो इंद्र तृप्ति के प्रति हमारी रुचि समाप्त हो जानी चाहिए। इस शरीर हमें कोई भी सुख नहीं दे सकता, ये शरीर दुखों की खान है, लेकिन जैसे हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं ये हमारा असली मित्र बन जाता है, और इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो लगाते हैं तो झूठे मित्र के समान प्रतीत होता है। तो मृत्यु जब पूर्ण रूप से निश्चित ही है तो हमें मृत्यु से, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की, मृत्यु से हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। जितना हम इस मृत्यु के विषय में चर्चा करेंगे उतने हम मृत्यु से परिचित हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, फिर मृत्यु से डरेंगे नहीं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, बार 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 इसका दर्शन करो कि जीवन की असली समस्याएं क्या हैं। जब भी जीवन में छोटी छोटी समस्याएं सता रही हों तो हमें यह समझना चाहिए ये समस्याएं असली समस्याएं नहीं है, इसका सोल्यूशन एक ही है, तांस्तिक्षस्व भारत, इसको सहन कर लो। और जीवन में जो हमारी शक्ति है, जो एनर्जी है, जो समय है, उसको लगाना चाहिए जीवन की असली समस्याओं के समाधान के लिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, प्रभुपाद जी बताते हैं इस संसार की हलचल से बचने का एक ही तरीका है कि ऐसी हलचल के अंदर हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करें, ये हमेशा जाने कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ये संसार की जो परिस्थितियां चल रही हैं केवल भ्रम है, तो इससे बचने के लिए मैं आत्मा हूं, मुझे कृष्ण की भक्ति में लगना है। इसलिए भक्त लोग मृत्यु से डरते नहीं है, जैसे जैसे भक्त वृद्ध होते जाते हैं वो और युवा होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति के समीप होते जाते हैं। जैसे जैसे भक्त मैच्योर हो रहे हैं वो अपने स्वरूप के निकट जा रहे हैं, अपनी युवावस्था को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए भक्त मृत्यु से नहीं डरते, भक्त का केवल एक ही डर है कि वो कहीं भगवान को भूल ना जाए, कृष्ण का कहीं विस्मरण ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम कृष्ण को भूलेंगे हम एक अगला शरीर तैयार कर देते हैं। कृष्ण के विस्मरण से ही हमें यह शरीर प्राप्त होता है, जब यह शरीर प्राप्त होता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं अपने जीवन को हमें इस ढंग से ढालना चाहिए कि हम कभी भी कृष्ण को ना भूलें, कैसे ही परिस्थिति क्यों ना हो हम कृष्ण को ना भूलें। अगर इस ढंग से जीवन को जिएंगे तो जीवन के अंत में भी हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इस कलेवरम शरीर को तो त्यागना ही है, इससे नहीं डरना, असली एंग्जाइटी होनी चाहिए अंत काले च माम एवं स्मरण, ये स्मरण हो जाए बस, ये असली एंग्जाइटी होनी चाहिए कि अंत काले हमें भगवान का स्मरण हो जाए। इसलिए अपने जीवन को इस ढंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए। वास्तव में इस मृत्यु लोक में लोग आर्ट ऑफ लिविंग कैसे कर सकते हैं, जोरीनाथ मारदी स्वामी महाराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार को स्टूल पिट बोला है, जहां पे लोग मल त्यागते हैं, इस स्टूल पिट के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जा रही है। स्टूल पिट के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग कौन सीखेगा, जो मल के कीड़े होते हैं, मल का कीड़ा ये सीखना चाहेगा, ट्रेनिंग मिलना चाहेगा कि मल में कैसे रहो। नहीं, हम लोग मल के कीड़े नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमें इस मल में नहीं रहना। तो असली आर्ट ऑफ लिविंग ये है कि हम आर्ट ऑफ डाइंग सीखें। जो व्यक्ति आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाएगा वो असली जीवन जीता है। जो आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाएगा कि कैसे शरीर त्यागना है, तो पूरा जीवन उसकी तैयारी करेगा। ये जीवन एक प्रिपरेटरी लिव है, जैसे स्टूडेंट्स को कॉलेज में, स्कूल्स में एग्जाम से पहले क्या मिलती है, प्रिपरेटरी लीव मिलती है। तो आप जब स्टूडेंट थे या कुछ हैं, आप बताइए जब ऐसी छुट्टियां मिलती हैं आप में से कितने लोग सिनेमा देखने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कितना खेलते हो, क्या आपका लक्ष्य होता है इन छुट्टियों में, क्या करें, एग्जाम की तैयारी करें। इसी ढंग से हमारा भी ये मनुष्य जीवन ये छुट्टी के समान है, प्रिपरेटरी लीव, सब चीजों से छुट्टी, केवल एक ही लक्ष्य है कि हमेशा मन कैसे कृष्ण में लगा रहे, कैसे हम हमेशा भक्ति में लगे रहे, और बाकी चीजों में हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेटरी लीव में ऐश करा रहे, छुट्टियां आजकल तो आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, क्रिकेट देखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जब एग्जाम आएगा तो क्या होगा, फेल, पुनरपि जननम पुनरपि मरनम, फिर सब, फिर रोने से कोई फायदा नहीं, फिर कोई रोके कोई फायदा नहीं। इसलिए हम क्यों ना हमेशा तैयार रहे। जब युवा होते हैं तो हम सोचते हैं ये सब बातें ठीक है, मैं अभी बहुत यंग हूं, कैसे अभी तो बहुत कुछ करना है। पहले शायद आपको उदाहरण दिया था, हमारे एक अलाहाबाद कॉलेज, MNIT कॉलेज, हम अलाहाबाद में प्रचार करते हैं, वहां पे एक लड़का था अनुज टंडन, अनुज टंडन अपने कॉलेज का टॉपर, और हमने ऐसे उनको ऐसे प्रचार किया। उसने चार माला शुरू की, दिल्ली में आया, दिल्ली में सी डॉट में नौकरी लगी काफी अच्छा, फिर आईएएस के एग्जाम क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी हो गया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया। घर वाले लखनऊ से आए यहाँ पे, एक पार्टी की, पार्टी में उसका पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, नर्सिंग होम में जाके इंजेक्शन लगवाया, घर वापस आया, फिर एक उल्टी आई, फिनिश। 24 साल का लड़का, ब्रिलियंट, आईएएस क्लियर, फिनिश, पता भी नहीं चलता कैसे एकदम सब कुछ समाप्त, गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हुआ, खत्म। कुछ पता है? तो ऐसे हम भ्रम में जी रहे हैं, अभी नहीं, अभी थोड़ा धीरे, बाद में तेज, ये थोड़ी समस्याएं समाधान करने, उसके बाद नहीं, तुरंत हमें अपने, चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों हो, हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। और अगर हम अपना पूरा जीवन इस ढंग से बिताते हैं तो हमारी मृत्यु वास्तव में बहुत यशस्वी होती है, बहुत यशस्वी मृत्यु होती है। जैसे पिछली बार हमने चर्चा की किस ढंग से भगवान के भक्तों ने सुंदर तरीके से शरीर छोड़ा, ऐसे आज भी हम उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे श्रीधर स्वामी महाराज, उनको बोलते थे जॉली स्वामी, बहुत प्रसन्न रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ जोक करते रहते थे, और वो हैट डालते थे, उस पर लिखा होता है प्रभुपाद डॉग, और हमेशा स्माइलिंग, हर किसी के साथ बहुत ही, जैसे कहते, उत्साहित थे। वो जुहू में थे, उन्होंने बहुत से नए प्रोजेक्ट्स किए थे और बहुत सुंदर प्रचार करते थे। उनको लीवर का कैंसर हो गया। हम देखते हैं जितने भी ये भक्त लोग हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है, वही हम उनको सब बड़े बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं। क्यों? प्रभुपाद लीला में लिखा गया है आचार्य गणों को कष्ट क्यों प्राप्त होते हैं। नंबर एक, जो उनके शिष्य हैं सही ढंग से नियमों का पालन नहीं करते तो सारा का सारा रिएक्शन स्वीकार करना पड़ता है। नंबर दो, वो हमें दिखाना चाहते हैं कि इस संसार में मृत्यु निश्चित है। नंबर तीन, वो हमें ये ढंग से दिखाते हैं किस ढंग से शरीर छोड़ना है। तो जितने भी आचार्य गण हैं उनके ऊपर एक कष्ट निश्चित रूप से आते हैं। लीवर का कैंसर हो गया तो वो सीधा मायापुर धाम में आ गए। डॉक्टर उनको मना कर रहा था कि आप जितना जाएंगे किसी भी समय शरीर छोड़ सकते हैं, उन्होंने मायापुर आएंगे फरवरी 2004 में क्या हुआ था, एक ऐतिहासिक घटना, पंचतत्व की स्थापना हुई थी। उन्होंने अपने हाथों से पंचतत्व की स्थापना की। जब उन्होंने वो फोटो देखी, जब वो अभिषेक कर रहे थे, दिस इज द बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ माई लाइफ, पंचतत्व की स्थापना की, पूरा फेस्टिवल उन्होंने बिताया। और जब फिर गौर पूर्णिमा के एक हफ्ते बाद, इस सप्ताह के बाद शिवा ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस होता है, उस दिन उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। जब बहुत बीमार थे तो उनके अपने गुरु भाइयों को बुलाते थे और सब मिलकर कीर्तन करते थे। तो ऐसी बीमारी की अवस्था में उनका पेट फूल गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर चेकअप कर रहा था, पेट को देख रहा था, तो मजाक कर रहे हैं डॉक्टर से, डॉक्टर इज इट ए बॉय और ए गर्ल। उस समय भी इतनी पीड़ा की अवस्था में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, वो डॉक्टर से मजाक कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, हंसते हंसते कोई समस्या नहीं है। इसी ढंग से हमारी जनरेशन कही, इस ओरिजिनल सदानंद स्वामी महाराज के शिष्य थे स्तोक कृष्ण प्रभु। वो पहले एक ब्रह्मचारी थे, फिर ग्रस्त आश्रम में गए। जैसे ही ग्रस्त आश्रम में गए उनको एक अजीब सा रोग हो गया, उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड हो गया, बिल्कुल, और चल फिर नहीं सकते थे, व्हीलचेयर में थे। डॉक्टर ने टाइम दे दिया, बस किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। उनके भक्त लोग उनको चौपाटी मंदिर में ले आए और फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर्स दिए उन्होंने, डेली भागवतम क्लास देते थे, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस ढंग से गुरु में श्रद्धा रखने से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। अनफ्लिंचिंग फेथ इन गुरु, वो बता रहे हैं, अब मैं इतना कष्ट में हूं लेकिन मैं कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि मुझे अपने गुरु में पूरा विश्वास है। और फिर स्वयं हिजोरी स्वामी महाराज उनके कान में बताते थे कि अब तुम्हारी सेवा निश्चित है, तुम जाकर ऊपर हिजोरी भक्ति तेज स्वामी महाराज को असिस्ट करोगे। और सब भक्तों के बीच में कीर्तन सुनते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा। जॉर्ज हैरिसन, जिन्होंने प्रभुपाद की बहुत मदद की, कृष्णा बुक के प्रिंटिंग के लिए $19,000 दिए थे और बहुत प्रचार में मदद करते थे, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से शरीर छोड़ा। सब भक्तगण जो उनके मित्र थे एकत्रित हुए, कीर्तन करते हुए, कीर्तन सुनते हुए वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो जयानंद प्रभु जो कि हमेशा रथ यात्रा में रथ मनाते थे, अंतिम समय तक हॉस्पिटल में भी थे तो वो प्रचार करते थे। और एक रथ यात्रा शायद कहां थी, लॉस एंजलिस में थी या कहां थी, अपने अंतिम समय में भी वो फोन पर लोगों को निर्देश देते रहे किस ढंग से नर्त को बनाना है, कैसे करना है। तो ये जीवन हमें छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं लगाना, इस पूरे शरीर को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे इस शरीर में भी सुखी रहेंगे और जीवन के अंत में ये हमारा अंतिम जन्म होगा और फिर हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।